तो बिल्कुल सामने देखेंगे, लंबा और गहरा श्वास भरना है और पूरी फोर्स से श्वास को बाहर फेंकना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। श्वास भरा, लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर का पंप चेस्ट के ऊपर, फिर श्वास को बाहर। उतना ही हमारा चेस्ट सिकुड़ना चाहिए, ठीक है, 25 से 30 बार लगभग, 25 से 30 बार। चलिए शुरू कीजिए, गहरा श्वास भरा, फोर्सफुली श्वास को बाहर किया, श्वास को फोर्सफुली बाहर किया और ब्रीदिंग को आप फील करेंगे। आपका जो फर्स्ट है विशुद्ध चक्र, गले पर जो हमारा स्थित माना जाता है योग शास्त्रों में, विशुद्ध चक्र पे आप फीलिंग करेंगे, जहां जिस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर आपका कंसंट्रेशन जाता है वो चक्र आपका क्लीन होता है, क्योंकि एनर्जी का फ्लो ऑटोमेटिक उस तरफ जाता है। गहरा सांस कीजिए शुरू, भरा, फोर्सफुली फेंका, फेंका फोर्सफुली, ब्रीदिंग में लंग्स को हमने दोनों ही साइड, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग दोनों साइड यूज करना है। छोड़ दीजिए आराम से, रिलैक्स रिलैक्स, चलिए रिलैक्स हो जाइए आराम से, दोनों हाथों को हल्का सा फोल्ड कीजिए नमस्ते की मुद्रा में, और जो हमारे साइड आर्म्स से हैं, ट्राइसेप्स से, बाइसेप्स से, वहां से हल्का सा चेस्ट को प्रेस करना है, अंगूठे लगभग हमारे कंठकूप को नजदीक या टच करते हुए, लगभग नजदीक, हल्का सा प्रेशर यहां से चेस्ट के ऊपर देते जाइए, आंखें बंद, और एक मिनट के लिए जिनको भी आप अपने जीवन में मानते हैं, जिनके प्रति भी आपकी श्रद्धा है, परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल, उनको बड़े प्यार से याद कीजिए। और जो भी आप योगिक व्यायाम करने जा रहे हैं उससे आपका शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे, मन को एकाग्र करते जाएं, हल्का सा चेस्ट के ऊपर प्रेशर देते जाएं, हल्का सा चेस्ट के ऊपर प्रेशर देते जाएं, मन को एकाग्र करने का प्रयास करें, कंसंट्रेट करें आज्ञा चक्र के ऊपर, अपनी भ्रकुटी के ऊपर, दोनों हाथों को हल्का सा रब करें, आंखों पर स्पर्श दें और छोड़ दें। अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने हमारे जो 6 पार्ट हैं वो हमारे मन से रिलेटेड हैं, यम नियम आसन और प्राणायाम को अगर छोड़ दीजिए, प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, सभी का जो रिलेशन है मैक्सिमम हमारे मन से है। और ये हमारे महर्षि जो भी योग के जनक थे वो ये जानते थे कि शरीर के बीमारियों का कारण 80% से ज्यादा हमारा मन है, और साइंस आज इस चीज को स्वीकार करती है कि मैक्सिमम हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो साइकोसोमेटिक हैं। हम वर्क बॉडी के ऊपर करते हैं, मन के ऊपर वर्क नहीं करते हैं। तो वही चीज आप यहां ब्रह्मा कुमारी इसमें जहां आए हैं बड़े अच्छे से जानेंगे कि कैसे हम अपने मन को भी तरोताजा रखें, उसको भी ड्रिल कराएं, उसको भी जितना परफेक्ट बनाते हैं, जितना सॉलिड बनाते हैं, उतना वो सारा दिन आपकी जो भी प्रेशर्स होते हैं उनको सह पाता है। चलिए, हमने बहुत छोटी सी क्रिया की, हल्का सा प्रेशर दिया, हल्का सा जब प्रेशर देते हैं तो हमारी जो मनोवाह नाड़ी होती है उसकी गति ऊर्ध्व होती है, जैसे जैसे मनोवाह नाड़ी की गति ऊर्ध्व होती है हमारे मन की कंसंट्रेशन बढ़ाने में आपको हेल्प करती है। बहुत ही सिंपल सी क्रिया, लेकिन यही वो क्रिया है जिसको महात्मा बुद्ध ने लगभग 6 वर्ष बोधि वृक्ष के नीचे खड़े होकर प्रयास किया, सिर्फ स्वचिंतन किया, न बाहर से कुछ देखा न सोचा, सिर्फ अपना स्वचिंतन किया और बुद्धत्व को प्राप्त किया। और वही है कि जितना हमारा मन एकाग्र होता जाता है उतनी हमारी जो भी प्राप्तियां हैं, जो भी हमारी एम है जीवन के, जो भी लक्ष्य हैं, उनको हम आसानी से प्राप्त कर पाते। चलिए नेक्स्ट एक और ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू करेंगे, अपने ऊपर देखना है, फर्स्ट एक्सरसाइज हमने की थी विशुद्ध चक्र के लिए, सेकंड जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं हमारा जो सहस्त्र चक्र है, सेंटर पार्ट है, वहां तक आपको ब्रीदिंग को फील करना है। लॉजिकली श्वास आपका लंग्स के अंदर ही जाता है, लेकिन कंसंट्रेशन, जैसे हम मन को एकाग्र करते हैं उस चक्र के ऊपर, एनर्जी का फ्लो वहां ट्रांसफर होना शुरू होता है, जिससे उसकी क्लींजिंग होती है। और दूसरा, जो ब्रेन सेल्स हैं हमारे, जो न्यूरॉन्स हैं, वो भी एक्टिवेट होते हैं। और जितना न्यूरॉन्स हमारे एक्टिवेट रहते हैं, उतना हमारे माइंड के साथ कोप अप करने में मदद करते हैं। जो हमारा ब्रेन का पार्ट है वो फिजिकल है, और जो माइंड है वो मेटाफिजिकल है। चलिए ऊपर देखते हैं, शुरुआत करते हैं। गहरा सांस भरना है और छोड़ना है। सांस भरा गहरे से, देखेंगे ऊपर। हाँ, कंसंट्रेशन आपकी, आपके सहस्त्र चक्र के ऊपर। बायोलॉजी और एनाटॉमी के हिसाब से हमारे ब्रेन के तीन पार्ट, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेड्यूला, जो सेंटर पार्ट है वहां तक हम महसूस कर रहे हैं अपने ब्रीदिंग को। लंबा और गहरा सांस जब भरते हैं तो लंग्स अच्छे से आपके फैलते हैं, और जितना फोर्सफुली उसको थ्रो करते हैं, एक्सहेल करते हैं, उतना वो ज्यादा से ज्यादा सिकुड़ पाते हैं। नॉर्मल 40-50% कैपेसिटी हमारा सारा दिन में यूज होती है, लेकिन यहां आप कोशिश कर रहे हैं 80-90% के करीब उसको यूज करने के लिए। छोड़ दीजिए, आराम से, रिलैक्स। चलिए एक और एक्सरसाइज करते हैं। इसमें श्वास मुख से भरेंगे, ठीक है, हल्का सा गोल बनाते हुए इस तरह से गहरा श्वास भरेंगे, जितना गहराई से आप भर सकते हैं आराम से, और गालों को बाहर की तरफ फुला के रखेंगे। श्वास भरने के बाद गालों को स्ट्रेच करेंगे ज्यादा से ज्यादा, और आपकी जो आंखें हैं, नोस्ट्रल्स है, उसको क्लोज रखेंगे, गहरा श्वास भर के रखेंगे, ठीक है। जितना आप गहरा श्वास भर के रखेंगे और गालों को जितनी देर आपने फुला के रखा है, उतनी देर जो स्किन है हमारे फेस की, उसका टोनिंग आपका बढ़ता है। सारा दिन जो धूल जमती है या ऑयल हमारा स्किन से निकलता है, उसको रिमूव करने में आपको हल्का सा हेल्प मिलती है। इसके साथ साथ अगर फेस पे कोई दिक्कत है तो हल्की सी स्टीम विद मेडिसिन या हर्बल्स डाल के आप ले सकते हैं। बाकी जो अंदर वाली स्थिति है आपकी, ये जितना स्ट्रेच आप इसको करते हैं, जो हमारे टिश्यूज हैं अंदर मुख के अंदर, वो भी स्ट्रेच होते हैं, जिससे सलाइवा वहां से बढ़ता है और डाइजेशन में आपको हेल्प मिलती है। और कई बार किसी किसी को सुबह जब उठते हैं तो हल्का सा फाउल स्मेल मुख से आती है, तो उसको भी दूर करने में मदद करता है, और जो मसूड़ों से कई बार ब्लड आता है उसको भी दूर करने में आपको हेल्प मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्वास मुख से भरेंगे गोल बनाते हुए, वापस जब आएंगे तो श्वास अपने नोस्ट्रल से बाहर करना है। श्वास धीरे से, पहले अंगूठे हटाएंगे नोस्ट्रल से और धीरे धीरे नाक से अपने श्वास को बाहर करना है। श्वास हमने मुख से भरा है हल्का सा गोल बनाते हुए, गालों को ज्यादा से ज्यादा देर फुला के रखा है। वापस जब आते हैं बहुत धीरे धीरे आपको श्वास दोनों नोस्ट्रल से बाहर करना है। छोड़ दीजिए, रिलैक्स आराम से। फिर एक बार श्वास जब मुख से भरते हैं तो हल्का सा एयर आपकी ठंडी होती हुई जाती है, और कभी भी जैसे कई बार अगर हार्ट की कोई दिक्कत है, बीपी बढ़ रहा है लग रहा है, और रास्ते में चलते हुए आपको लग रहा है कि इस तरह से कि बहुत ज्यादा श्वास फूल रहा है, उखड़ रहा है, तो इसी तरह से मुख से लंबी और गहरी श्वास 2-4 बार अगर लेंगे तो थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिलता है। और जहां भी आपको जगह मिले वहां लेट जाइए, तो हार्ट वाली जो बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम कर रही है तो थोड़ा सा आपको रिलैक्स करने में मदद करती है। इस क्रिया को मुख से जब श्वास भरते हैं उसको बोलते हैं काकी मुद्रा। योगियों ने इस मुद्रा को लिया है कौवे से। कौवा जब आकाश में उड़ता है और उसको लगता है कि उसकी एनर्जी कम हो रही है, तो इसी तरह एयर को सक करता है। और एयर का रेजिस्टेंस बॉडी में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, आपने देखा होगा पहले, योगी लोग जब कुछ अपना योग का प्रदर्शन करते थे तो यहां सरिया लगाया, श्वास का प्राणायाम भर के रखा, सरिया मोड़ा, चेस्ट के ऊपर से जीप गुजारा या हाथी तक गुजारा, वो इसी एयर रेजिस्टेंस का और प्राणायाम का डीप एक अभ्यास जो होता था योगियों का वो वहां तक होता था। और बायोलॉजिकली जब हम गहरा सांस भरते हैं, लंग्स हमारे अच्छे से फैलते हैं, हार्ट के लिए आपको फायदा मिलता है, फेस के लिए आपको फायदा मिलता है, ठीक है। और जो ये काकी मुद्रा है, कहते हैं कि काकी मुद्रा परामुद्रा सर्वतंत्रेषु गोपिताः एषः प्रसाद मात्रेण काकवर्णुरुजो भवेत्। अर्थात वो कहते हैं कि जो काकी मुद्रा है परामुद्रा, ये पूरे आपके ब्रेन सेल्स को और ऊपर वाले हिस्से को एक्टिवेट करती है, उसको हेल्दी रखती है। और योगियों ने इसको बड़ा अच्छे प्रयास से आपको किसी योग साधक से सीखने के लिए एडवाइस किया है। और उसके बाद वो बोलते हैं कि एषः प्रसाद मात्रेण काक वन्नु रुजो भवेत। अर्थात जिस तरह से पक्षियों में कौवा सबसे ज्यादा स्वस्थ माना जाता है और उसकी एज ज्यादा मानी जाती है, उसी तरह से हमारे लिए भी उसका इफेक्ट होता है। चलिए एक बार दोबारा इसका अभ्यास करते हैं। मुख से श्वास भरेंगे गहरा, नोस्ट्रल्स क्लोज, धीरे धीरे श्वास नाक से अपने बाहर करना है। गालों को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच करके देखिए, जितना स्ट्रेचिंग कर रहे हैं उतना टोनिंग बढ़ती है आपके स्किन की। हाँ, आंखें बंद रखनी है, गर्दन नीचे रखनी है। जो योग में हमारे प्राणायाम के दौरान मूल बंद, उड्यान बंद और जालंधर बंद आता है, उसमें से एक बंद भी हमारा लगता है जालंधर बंद, गर्दन को जब नीचे करते हैं। छोड़ दीजिए, आराम से रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। चलिए भी दो तीन मूवमेंट सिर्फ बॉडी का करते हैं, हल्का से नेक से शुरू करते हैं, ठीक है। आगे और पीछे गर्दन को आपने लेके जाने हैं, थोड़ा सा आगे पीछे। सर्वाइकल लग रहा है तो ज्यादा आगे आप गर्दन को नहीं लेके आएंगे। और अगर गर्दन में दर्द आप महसूस करते हैं, ज्यादा वर्किंग आपकी लैपटॉप पे या मोबाइल पे है, गर्दन नीचे झुकती है, तो बैक बेंडिंग वाली एक्सरसाइज ज्यादा करें। और जो पिलो आप यूज करते हैं तकिया बिल्कुल हल्का कर दें। सोने के टाइम अगर लेफ्ट साइड आप सोते हैं तो ज्यादा बेटर है, ताकि आपका राइट नोस्ट्रल चलता है, सूर्य स्वर जिसको बोलते हैं, और सूर्य स्वर आपका डाइजेशन के लिए मदद करता है आपको। छोड़ दीजिए जी, लेफ्ट साइड ऐसे लेफ्ट करवट अगर सोएंगे तो हमारा, हाँ जी, तो हाँ करवट जी जी, लेफ्ट साइड सोएंगे तो जो अपोजिट स्वर होता है हमारा वो चलता है। कहते हैं कि दिन को तो चंदा चले, चले रात को सूर्य, यह निश्चय कर जानिए प्राण गमन अति दूर। अगर आपके स्वर की जो स्थिति है वो बैलेंस रहती है, दिन में हमारा चंद्र स्वर चलता है, तो जल्दी से आप अपना टेम्पर भी लूज नहीं करेंगे, बड़ा काम इजीली आप शांत दिमाग से अपना काम कर पाएंगे। और रात में जब आपका सूर्य स्वर चलता है वो डाइजेशन में आपको मदद करता है, जो गर्म स्वर है जो आपने डाइट नाइट में ली है वो आपको अच्छे से डाइजेशन आपका हो पाता है, ठीक, तो वो स्वर का हिसाब किताब होता है। चलिए साइड में नेक को साइड मूवमेंट देना है, सिर्फ हल्का सा स्ट्रेच कीजिए। यहां आपको लगे कि आपके थायराइड और पैराथायराइड जो दोनों ग्लैंड्स हैं वहां तक स्ट्रेचिंग आपको हल्का सा आ रहा है, स्ट्रेच कीजिए, थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए, हल्के से खिंचाओ, पूरा यहां खिंचाओ चाहिए। गर्दन पे स्थित हमारे दोनों ही ग्लैंड्स, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स, जितना एक्टिवेट होते हैं उतना थायराइड की दिक्कत आपको क्योर होती है, आइदर हाइपर थायराइड और हाइपोथायराइड दोनों को ही क्योर करने में आपको हेल्प मिलती है। इसके साथ साथ सर्वाइकल या थायराइड की अगर दिक्कत है तो आप गर्दन के ऊपर ठंडी और गर्म सेक, 4 मिनट ठंडा 1 मिनट गर्म, 2 से 3 सेट ठंडी गर्म सेक के कर सकते हैं, तुरंत आपको पेन में थोड़ा सा रिलैक्स होगा। और पानी से या कपड़ा निचोड़ के करते हैं तो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि जो स्टीम है पानी की वो हमारे स्किन के 5 लेयर को पार करके थोड़ा सा ज्यादा रिलैक्स आपको करती है। जी बैक वाले क्वेश्चन में, जहां आपको पेन लग रहा है, जो स्पाइन और नेक का जो जोड़ है वहां आपको देना है, थायराइड के लिए आपको गर्दन पे देना है, थायराइड आपका थायरोक्सिन का जो बैलेंस होता है, थायरोक्सिन जो निकल रहा है हमारे ग्लैंड से, उस ग्लैंड की जब एफिशिएंसी कम होती है, पूरी तरह से वो एक्टिव नहीं हो पाती है, उसको हमने एक्टिवेट करना है। लेकिन शुरुआत में हमेशा याद रखिए कि जो भी मेडिसिन आपकी हैं उनको कंटिन्यू रखिए, एकदम से आपने कभी भी बंद नहीं करना। जब लगे कि हमारा थायराइड बैलेंस होना शुरू हुआ है, हमारे थायराइड ग्लैंड्स एक्टिवेट होना शुरू हुए हैं, उसके लिए स्टीम है, एक्सरसाइज है, ठंडी गर्म पट्टी है, मिट्टी की लपेट है, बहुत सारी चीजें हैं नेचर क्योर वाले सिस्टम में। जी जी, दोनों साइड्स में करेंगे और जितना स्ट्रेचिंग करेंगे ना उससे ज्यादा जल्दी से वापस आएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है जो भी मेडिसिन है आपकी वो कंटिन्यू रखनी है, धीरे धीरे उसको रिड्यूस करना है अपना डायग्नोज करने के बाद। एकदम से नहीं कि भाई योगा शुरू किया तो सारी चीजें छोड़ दे, तो सारी ही पैथी हमारे सहयोग करती हैं। एलोपैथी का बहुत अपनी जगह पे रोल है, आयुर्वेद का अपनी जगह पे रोल है, नेचुरोपैथी का अपनी जगह पे रोल है, योगा का अपनी जगह रोल है, तो हर चीज को अपने तरीके से यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए छोड़ दीजिए आराम से, रिलैक्स, हल्का सा भी रोटेशन, क्लॉकवाइज 4 से 5 राउंड क्लॉकवाइज, धीरे धीरे थोड़ा धीरे करें, स्ट्रेचिंग ज्यादा दें। स्ट्रेचिंग जितना ज्यादा आ रहा है, यहां से लगे आपका थायराइड, यहां से खिंचाओ पूरा गर्दन, पीछे के हिस्से पे खींची फिर नीचे, और आंखें खुली रखें प्लीज। आंखें कई बार बंद करते हैं ना तो एकदम से सर घूमना शुरू होता है, चक्कर आना शुरू होता है, रेयर केसेस में, किसी किसी को। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट, 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 स्लो चलें, स्लो चलें, स्ट्रेचिंग ज्यादा, स्पीड स्लो, स्ट्रेचिंग ज्यादा। आंखें खुली हुई, आंखें खुली हुई, छोड़ दीजिए आराम से, चलिए रिलैक्स, चलिए कोरेक्सेस। अभी गर्दन की बात, कंधे के ऊपर आते हैं, कंधे की शुरुआत करते हैं थोड़ा सा एक्सरसाइज की। पहले एक बार थोड़ा सा अपनी चेकिंग कर लीजिए, राइट हैंड को ऊपर से लाइए, लेफ्ट हैंड नीचे से इस तरह से पीछे पकड़िए उसको, हाँ कोशिश करें कि टच हो जाए, राइट हैंड ऊपर, राइट हैंड अप, हाँ लेफ्ट हैंड नीचे से, हाँ छोड़ दीजिए, अभी लेफ्ट ऊपर से ले आइए और राइट वाला नीचे से, एटलीस्ट टच हो आपका पीछे। जी जी जी, क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे सेल्स और टिश्यूज हैं ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ डिस यूज और लेस यूज, उनकी एफिशिएंसी वहां धीरे धीरे कम होने लगती है। जो राइट हैंडर्स हैं वो राइट हैंड ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए राइट हैंड वाला जो ये बैलेंस सॉकेट जॉइंट है ये आपका मैक्सिमम एंगल्स पे खुला हुआ होता है, लेकिन लेफ्ट हैंड हम उतना यूज नहीं करते हैं और मसल्स भी हमारे हल्का सा बहुत स्लाइटली वीक होते हैं, राइट से वीक होते हैं। जो लेफ्ट हैंडर है उनका लेफ्ट मजबूत होगा, जो राइट हैंडर है उनका राइट वाला मजबूत होगा, तो इसलिए वो एक साइड की जो मूवमेंट है हमारी हल्का सा कम होती है। उसमें अगर थोड़ा सा गैप है, समझिए आपका हाथ में 4 से 6 अंगुल का गैप है, तो कोई बात नहीं, 10-15 दिन रेगुलर आप एक्सरसाइज करेंगे तो लगना शुरू हो जाएगा। अगर ज्यादा गैप है, समझिए कि यहां से हाथ जा ही नहीं रहे है ना, या यहां से पीछे आ ही नहीं रहे, तो वो कई बार फ्रोजन शोल्डर की शुरुआत होती है। वहां आपने ठंडी और गर्म सिकाई वो आपको रेगुलर 30-40 दिन करनी है, प्लस जो एक्सरसाइज है हमारी वो आपको रेगुलर करनी है, प्लस एक्टिव रजिस्टर्ड एक्सरसाइज, मींस कि दूसरे व्यक्ति ने हाथ को आपके पकड़ा है और धीरे धीरे वो कंधे को हिलाना शुरू कर रहे हैं, है ना, या पुली के ऊपर आप थोड़ा सा वेट लेके हल्का हल्का शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आपको 30-40 दिन लगेगा अगर बहुत ज्यादा फ्रोजन शोल्डर रहे उसको ठीक करने के लिए। तो चलिए अभी कंधे की एक्सरसाइज शुरुआत करते हैं, श्वास भर के रखेंगे ताकि इस 20-25 मिनट में जो दो दो तीन तीन क्रियाएं हम एक साथ मिक्स करेंगे ताकि ब्रीदिंग का भी फायदा हो, प्राणायाम का भी फायदा और कंधे वाली जो एक्सरसाइज है उसका भी फायदा। चलिए श्वास भर के रखेंगे, आगे से पीछे पहले, हाँ श्वास नाक से बाहर करेंगे, गालों को जो फुला के रखा है जो पहली क्रिया का फायदा वो हमें मिल रहा है, और कंधे जितना मूवमेंट दे रहे हैं, हमारा बाल एंड सॉकेट जॉइंट है इस तरह से रोटेट करता है पूरा जॉइंट के ऊपर, तो जितना हमारा ये एक्टिव है उतना टॉक्सिन्स वहां कम से कम जमते हैं, उतने कंधे आपके एक्टिव रहते हैं, दर्द नहीं होता है और आपकी फिटनेस अच्छी रहती है। अपोजिट, पीछे से आगे, पीछे से आगे, धीरे से पीछे लेके जाइए, हाँ पीछे थोड़ा सा आपको स्ट्रेचिंग और देना है, हाँ पीछे की तरफ लेके हल्का सा, स्ट्रेच ज्यादा कीजिए, काउंटिंग नहीं करनी है ज्यादा, स्ट्रेचिंग ज्यादा चाहिए। छोड़ दीजिए, आराम से रिलैक्स। अभी दोनों हाथों को ऊपर लेके इस तरह से, है ना, लॉक कीजिए, और यहां से अपने ये चीज को बेंड करना है, और कमर को इस पोर्शन तक बेंड करना है, सिर्फ हाथों को नीचे नहीं लेके जाना है, हाथ यही टच रहेंगे आपके कानों से, यहां टच, अब जितना आप जा पाते हैं, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे ऊपर लोक नहीं, खोलने नहीं चाहिए कानों से, खोलने, जब कानों से खोल लेते हैं तो आपके हाथ इजी नीचे चले जाते हैं, नहीं, यहां स्ट्रेचिंग ज्यादा देना है, पूरा ऊपर लाइए, फिर स्ट्रेच कीजिए, थोड़ा सा रोक के रखिए, हल्का सा रोकें, हाँ, अपोजिट चेंज कीजिए, साइड चेंज कीजिए। वेस्ट के लिए भी आपको फायदा है, जो हमारा बेली के ऊपर फैट जमता है एक्स्ट्रा, वहां से रिमूव होता है, बेली साइज जो साइज है बहनों के लिए लगभग 30-32 और भाइयों के लिए 34 या 36 अगर रहता है बेल्ट साइज तो ज्यादा बेटर है, और बीएमआई अगर हमारा 25 के अंदर में रहता है तो बेटर है। बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें हमारा जो वेट है डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर, वेट इन केजी, हाइट इन मीटर्स, अगर ये 25 के आसपास आपका बीएमआई है तो लगभग आपकी फिटनेस अच्छी है, लेकिन अगर 30 या 32 या उसके ऊपर जा रहे हैं तो फिर फर्स्ट ग्रेड ओबेसिटी है, वहां उसको कंट्रोल करना शुरू कीजिए। तो जितना फिटनेस के बारे में आप खुद अपना ध्यान रखेंगे उतना आप अच्छे रहेंगे, और जितना मेडिटेशन यहां सीखे जाएंगे, जो मेडिटेशन करेंगे वो आपको मेंटली भी हेल्दी रखेगा। चलिए अभी कमर और थोड़ा सा पैरों में डिस्टेंस दीजिए, दोनों हाथों को सामने लेके आइए, अभी कंधे और कमर दोनों को हम स्ट्रेच कर रहे हैं एक साथ, धीरे से आप चलेंगे, आपका लेफ्ट साइड चलिए धीरे धीरे चलिए, हाँ, बिल्कुल पीछे वाले हाथ को देखने की कोशिश कीजिए, वहां होल्ड कीजिए थोड़ा सा, धीरे धीरे वापस आइए सामने की तरफ, फिर चेंज कीजिए साइड, राइट साइड आपका राइट, जितना यहां आपका स्ट्रेचिंग पड़ रही है वेस्ट के ऊपर उतना वहां से फैट हटाने में आपको हेल्प मिलती है। इसके साथ साथ फैट अगर आपको ज्यादा लग रहा है, जो आपका आइडियल वेट है, तो अगर उससे 1 kg फैट अगर एक्स्ट्रा है तो 1 kg फैट 8,800 कैलोरीज स्टोर करता है बॉडी में। अब उस 8,800 कैलोरीज को हमें कट करना है, आइदर डाइट से कट करें, वर्कआउट से कट करें, शुगर कट करें, ऑयल कट करें, जैसे भी आपको करना है, लेकिन मैक्सिमम जो कट डाउन है हमारा 1200 कैलोरीज लगभग बॉडी को, आप बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं करते हैं तब भी आपको चाहिए, तो आपने 300 से 400 कैलोरीज से ज्यादा कट नहीं करना है, मीन्स की ज्यादा भूखा आपको नहीं रहना है, थोड़ा थोड़ा कट करना है, ताकि जो ग्रेजुअली आपका वेट रिड्यूस होगा वो लंबे टाइम तक मेंटेन रहेगा। एकदम से आप फास्टिंग करके या उस तरह से जो रिड्यूस करते हैं वो जल्दी से फिर आप जैसे ही डाइट शुरू करते हैं दोबारा से गेन होना शुरू हो जाता है। चलिए जी, चलिए, हाँ जी, चलिए थोड़ा सा कंधे को एक बार पूरा रोटेट करते हैं खोल के, हाँ, सांस भर के रखेंगे, हाँ, दोनों हाथों से, हाँ, साइड में किसी को नहीं लगे, हल्का सा एंगल चेंज कर लीजिए, कोहनी सीधी रखेंगे तो स्ट्रेचिंग ज्यादा हो, यहां से पूरा आपको लगे कि पूरा कंधा आपने खोला है, कोहनी सीधी कोहनी रखेंगे तो ज्यादा स्ट्रेचिंग आपको मिलेगा। अपोजिट प्लीज, हाँ, अपोजिट कीजिए, पीछे से आगे लेके आइए, हाँ, थोड़ा सा आपको स्ट्रेचिंग पीछे की तरफ देनी है, फिर उसको आगे घुमा के लाइए, अंगूठा अंदर, मुट्ठी अंदर बंद रखते हैं तो हम स्ट्रेंथ ज्यादा गेन कर पाते हैं। फिटनेस के कुछ फैक्टर्स है, स्पीड है, स्टेमिना है, स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है, एजिलिटी है, एबिलिटी है, तो जितना हम स्ट्रेंथ अपने मसल्स की यूज कर रहे हैं उतना स्ट्रेंथ भी उनकी बढ़ती है। अपोजिट भी करते हैं, अपोजिट वाले पे थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, छोड़ दीजिए आराम से रिलैक्स। चलिए हल्का सा पैरों में डिस्टेंस लगभग 1.5 से 2 फीट ज्यादा नहीं, दोनों हाथों के पीछे हमने सपोर्ट दिया है इस तरह से, अंगूठा अंदर और ऐसे मुट्ठी बंद करके यहां सपोर्ट दिया है हमने, हमारा जो लोअर पार्ट है स्पाइन का, लंबर और कोक्सिक्स वाला जो जॉइंट है वहां हमने इस तरह से सपोर्ट दिया है, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल लास्ट वाला जो पार्ट है ना, लंबर और कोक्सिक्स वाला, और यहां से हाथ का प्रेशर आगे की तरफ और चेस्ट से धीरे धीरे आपको बैंड होना है पीछे, और श्वास हल्का सा भरते हुए जाइए पीछे, बहुत ज्यादा बैंड नहीं होना है, बैलेंस बना के देखिए, हाथ से सपोर्ट देके रखिए आगे की तरफ, धीरे धीरे वापस, फिर एक बार। स्पाइन के अंदर हमारे दो आर्क हैं, कनकेव और कन्वेक्स। बहुत ज्यादा अगर किसी एक पोस्चर पे आप लगातार बैठते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा पोस्चुरल डिफॉर्मिटी आना शुरू होती है और उन आर्क में थोड़ा सा चेंज आना शुरू होती है। बहुत माइनर सी होती है, मींस एमएम से भी कम होती है, मिलीमीटर से भी कम होती है, लेकिन रेगुलर जब उसी पोस्चर पे आप बैठते हैं, लंबे टाइम तक बैठते हैं और पेन होने के बावजूद भी आप वो पोस्चर चेंज नहीं करते हैं, तब लंबे टाइम के बाद पोस्चुरल डिफॉर्मिटी शुरू होती है और वो पेन आपको फिर लंबा परेशान करता है। इसलिए बेटर है कि जब आपको लग रहा है ज्यादा देर से आप बैठे हैं और पेन हल्का सा हुआ है, तो उस पोस्चर को दो चार मिनट के लिए चेंज कर लीजिए, है ना। थोड़ा सा वॉकिंग कर सकते हैं, अगर ऑफिस में आपके थोड़ा सा रेस्ट की है पोजिशन, तो दो चार मिनट अपना थोड़ा सा कमर को सीधा कर सकते हैं ताकि वो प्रेशर आपका कम पड़े। पेन हमें ये बताता है कि आपके जो ऑर्गन्स हैं, जो लिगामेंट्स हैं उससे रिलेटेड, और जो टेंडेंट्स हैं वो थोड़ा सा ओवरलोड हो गए, और उस ओवरलोड को अगर लंबे टाइम तक हम अवॉइड करते हैं तो वो फिर परमानेंट आपको पेन परेशान करते हैं। ठीक है, अभी आगे झुकेंगे, लेकिन जिनको भी कमर दर्द है वो जहां आपको लगता है कि हल्का सा पेन की स्टार्टिंग है उससे ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे। ठीक है, फॉरवर्ड बेंडिंग अगर पेन है तो उसको आपने अवॉइड करना है, बैक बेंडिंग आप इजीली कर सकते हैं, और तीन स्टेप में आगे की तरफ जाएंगे। ठीक है, दोनों हाथों को इस तरह से फोल्ड करेंगे, पैरों को हल्का सा फैलाया सामने, श्वास छोड़ते जाएंगे हर बार, 1 2 3। थर्ड में कोशिश करें हल्का सा ज्यादा नीचे जाने की, लेकिन फर्स्ट वाली स्टेप पे आपको अगर लग रहा है कि कमर में दर्द शुरू है तो उससे ज्यादा आपने नहीं झुकना है। वापस इजीली एक ही बार में, वापस एक बार में आएंगे, जाएंगे तीन बार में, हमने स्पाइन को हल्का सा फॉरवर्ड बेंडिंग देनी, ब्रीद आउट कर जितना नहीं, ब्रीद आउट करते जाइए, सांस भरना नहीं, ब्रीद आउट करते जाइए प्राणायाम की तरह। जब हम ब्रीद आउट करते हैं हमारी जो भी ऑक्सीजन है पेट के अंदर, जो हवा है वो कम होती है, हमें बेंडिंग में हेल्प मिलती है ज्यादा। तो जितना आपने ब्रीद आउट किया है उतना ज्यादा आप आगे की तरफ झुक पाते हैं। फिर अगर कमर में दर्द थोड़ा सा महसूस कर रहे हैं तो कई बार जो हमारे पिलोज होते हैं, जो गद्दे होते हैं, जो आप यूज कर रहे हैं, मैट्रेसेस हैं, अगर वो 10-15 साल से ज्यादा पुराने हो गए हैं तो उनकी डेंसिटी काफी कम होना शुरू हो जाती है बीच बीच में से। तो स्पाइन जब हमारा रात को हम सोए हैं और वो थोड़ा सा भी अगर डिफॉर्म है अपने एग्जैक्ट एंगल से तो वो पेन आपको रेगुलर रहता है। इसलिए अगर 10 या 15 साल से पुराने हो गए हैं पिलोज तो उनको चेंज कर लीजिए, नया ले लीजिए। और आजकल बड़ा अच्छा 60-70 डेंसिटी तक के जो फोम है वो आ रहे हैं, जिसपे बहुत ज्यादा आपका कमर आपको दबती नहीं है। ठीक है ना, तो जितना आप सोने के टाइम आपका एंगल स्पाइन का दोनों आर्क आपके अच्छे से मेंटेन रहते हैं उतना कमर दर्द से आप बच पाते हैं, उतना आपको हेल्प मिलती है। उसके साथ साथ ठंडी और गर्म सेक आप कमर के ऊपर दे सकते हैं अगर पेन है तो, और कई बार कॉन्स्टिपेशन का भी रीजन होता है, अगर कॉन्स्टिपेशन रहता है ज्यादा तो भी कमर में दर्द होता है, तो उसके लिए एनिमा है, स्टमक वाश है और कुंजल है, वो चीजें आपको योगा में मदद करती हैं। चलिए थोड़ा सा भी डायगोनल मूवमेंट शुरू करते हैं। यहां से हमारा हिप जॉइंट सबसे बड़ा जॉइंट है, उसको भी थोड़ा सा खोलने का प्रयास करते हैं। हर बार श्वास भरेंगे, भरा और पैर को ऊपर टच किया, हाँ डायगोनल, कंधे को यहीं रखें, हाथ को, हाँ कोशिश करें आप नहीं झुकें, हमें हिप जॉइंट को खोलना है। हिप जॉइंट सारा दिन में यूज होता है लेकिन 40% और 50% यूज, ज्यादा नहीं खुलता है। यहां हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा उसको मूवमेंट देने की, नहीं सेम नहीं, सेम वाले में नहीं कर पाएंगे आप। यहां से डायगोनल है, लेफ्ट टू राइट, ये यहां से टच की डायगोनल, डायगोनल में बैलेंस भी बना रहता है और स्ट्रेचिंग भी आप ज्यादा दे पाते हैं। छोड़ दीजिए आराम से। चलिए अभी सिर्फ एक मिनट के लिए जंपिंग करेंगे, बिल्कुल लाइट, हर बार सांस लेके ऊपर जाना है और छोड़ते हुए नीचे आना है, और टोज के ऊपर करेंगे। ठीक है, पैरों को खोलेंगे साइड में, ठीक है, हाँ हथेलियां बाहर की तरफ, बाहर की तरफ रखेंगे तो क्लैपिंग की आवाज नहीं, जब बाहर की तरफ करते हैं तो रेडियस और अल्ना दोनों बोन स्लाइड करती है और मैक्सिमम स्ट्रेचिंग होती है। हथेली अगर बाहर की तरफ आपने रखी है तो क्लैपिंग की आवाज नहीं आएगी। हाँ, साइड साइड यहां से सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। सिर्फ जंपिंग अवॉइड करनी है। अगर किसी को हर्निया की कोई शिकायत है तो वहां अपने अवॉइड करना है। और भाइयों में अगर हर्निया की दिक्कत है तो जो भी सपोर्टर्स होते हैं वो आप बांध के रखें एक्सरसाइज के टाइम पे। और क्लींजिंग जितना आंतों की रखेंगे उतना हर्निया से भी आप बच पाएंगे। जितना क्लींजिंग रखेंगे, हमारी जो आंतें हैं 28 फीट लगभग छोटी आंत है और 8 से 10 फीट हमारी बड़ी आंत है, तो जो भी हमारे टॉक्सिन्स हैं, जो वेस्ट है, वो वेस्ट धीरे धीरे वहां थोड़ा थोड़ा जमा होता है। बहुत ज्यादा जब जमने लगता है और वो क्लीन नहीं हो पाता है तो बार बार प्रेशर बनने की वजह से आंतों पे वो वहां से अपना उस स्पाइरल फॉर्म से निकल के लटकना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ठंडी और गर्म पट्टी पेट के ऊपर, नीचे सूती कपड़ा गीले पानी में भिगोया, उसको निचोड़ा पेट के ऊपर, नाभि से नीचे वाले पोर्शन पे उसको बांधा, थोड़ा सा टाइट बांधेंगे। उसके ऊपर गर्म कपड़ा, कोई भी सूती, आपके पास पुराना कंबल पड़ा है, मफलर पड़ा है, कुछ भी गर्म कपड़ा पड़ा है, वो उसको बांध के रखेंगे 20 मिनट के लिए। ठीक है, और दिन में सपोर्ट लगा के रखेंगे। और आंतों को जितना क्लींजिंग आप रखेंगे, लिक्विड डाइट ज्यादा रखेंगे, नेचर क्योर में एनिमा, योगा में स्टमक वॉश और मशीनों से कोलोन थेरेपी, ये तीन सिस्टम है जो आपके क्लींजिंग आंतों को अच्छे से क्लीन करने में आपको हेल्प करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि इन चीजों के ऊपर आपको डिपेंड नहीं होना है। एनिमा भी अगर लेते हैं तो रेगुलर आपको नहीं करना है। ठीक है, 10-15 दिन लिया उसके बाद डिस्कंटिन्यू कर दीजिए। कोलोन थेरेपी भी अगर लेते हैं तो कोलोन थेरेपी महीने में एक ही बार लीजिए, क्योंकि पूरा आंतों को खोलता है गर्म पानी, और जितना वो खुलती हैं चीजें, जब तक उसको कोल्ड नहीं मिलता है वो चीजें सिकुड़ना छोड़ देती हैं, कम कर देती हैं। इसलिए क्लींजिंग तो हमारी अच्छी होती है रेगुलर जब करते हैं, लेकिन जो उनका ऑटो सिस्टम है वो वीक पड़ जाता है। इसलिए कोई भी आपने जो सिस्टम लिए है उसको बहुत ज्यादा उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना है। बॉडी को अपना वर्कआउट अपने आप से करने दीजिए, है ना। जितना नेचुरल प्रोसेस पे हम रहेंगे, जितना नेचुरल प्रोसेस से हमारी आंतें क्लीन होती हैं, जितना डाइट से क्लीन होती हैं, फ्रूट्स डाइट ज्यादा लीजिए। रात में कोशिश करें कि आप 6-7 बजे तक अगर भोजन ले लेते हैं तो अच्छा आपको हेल्प करता है, ताकि रात में आपकी बॉडी को ज्यादा वर्कआउट नहीं करना पड़ता है, नींद भी अच्छी आती है और डाइजेशन भी अच्छा होता है, है ना। और सर्केडियन साइकिल जो है हमारा, उसको भी डिस्टर्ब ना होने दें कि कभी रात को 11 बजे खा रहे हैं पार्टी में जाके, या कभी दिन में 2 की जगह 5 बज गए हैं और फिर रात को शुरू कर दिया है। तो एक बॉडी का हमारा अंदर से एक सर्केडियन साइकिल सेट होता है कि किस टाइम हमने डाइट लेनी है। वो डाइट हमने जब उस टाइम पे ली है तो आपको बेटर हेल्प मिलती है, अच्छे से वो डाइजेस्ट होती है। और वो टाइम अगर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है तो आपको डिस्टर्बेंस होती है। चलिए शुरू करते हैं। अभी थाइज के लिए हल्का सा आपको सिर्फ बैठना है पंजों के ऊपर। हाँ, सीधा स्पाइन सीधा रखिए। आप सिर्फ 1 मिनट बैठिए, हल्का सा कंपन आप थाइज में महसूस करेंगे। हाँ, हल्का सा वाइब्रेशंस महसूस करेंगे। थाइज की बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ आपकी और काफ मसल्स की स्ट्रेंथ अच्छे से बढ़ती है। स्पाइन सीधा रखें, स्पाइन सीधा रखें। हल्का सा बैलेंस के लिए, इस सांस जो है आपका सिर्फ बैलेंस के लिए, हल्का सा डिस्टेंस, है ना, ताकि बैलेंस आपका बना रहे। बहुत ज्यादा पैरों को मिला के रखते हैं तो हमारा स्टेंस अनस्टेबल होता है। हल्का सा जितना उसको फैलाते जाते हैं स्टांस हमारा बढ़ जाता है, हमारी खड़े होने की कैपेसिटी अच्छे से बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। छोड़ दीजिए। एक और घुटनों के लिए और आपके थाइज के लिए। पैरों को साइड, घुटने जो है इसको बीच से साइड में खोलना है और आपको नीचे बैठना है, ये साइड में खोलते जाइए। हाँ, अब ये एंगल चेंज हुआ, आपको घुटने के लिए भी मजबूती आएगी। घुटनों में कहीं अगर पेन रहता है तो आपका बोन डेंसिटी चेक करा लीजिए। कई बार बोन डेंसिटी हमारा कम होना शुरू होती है और जो फ्लूड होते हैं हमारे जॉइंट्स के साथ में, वो कई बार उनकी जो केमिकल चेंजेस कुछ आती हैं वो स्टिफ होना शुरू होते हैं, तब भी हमारा घुटनों में पेन होता है। और विशेष रूप से, हाँ जी, हल्का सा जी, थोड़ा सीधा रखेंगे तो स्ट्रेस कम हो जाएगा, यहां ज्यादा रहेगा। ठीक है ना। और इसके साथ साथ अगर घुटनों में ज्यादा दर्द आपको महसूस हो रहा है तो कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट आपकी डॉक्टर की एडवाइस के साथ है ना, वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और बेटर है कि अगर एक गिलास मिल्क अगर आप लेते हैं तो बेटर हो, कोई लेता है कोई नहीं लेता है, अगर आप डाइट आप जैसे फॉलो करते हैं वो आपके ऊपर है। लेकिन कैल्शियम का सप्लीमेंट अगर मिल्क नहीं ले रहे हैं तो फिर कैल्शियम के जो सप्लीमेंट है, और विटामिन डी के लिए जितना आपको थोड़ा सा सन में एक्सपोजर मिलता है बॉडी को, वो आपको चीजें अच्छे से आपकी बोन को, बोन डेंसिटी को अच्छा से मजबूत रखने में आपको हेल्प करती है। चलिए एक मिनट हल्का सा रनिंग करते हैं, हल्की सी रनिंग है सिर्फ एक मिनट की। अगर एक मिनट की रनिंग के बाद आपका पल्स रेट लगभग 90 और 100 और मैक्सिमम समझिए कि 110, इससे ज्यादा नहीं जाता है, तो आपकी फिटनेस बहुत अच्छी है। ठीक है, चलिए। हर बार लेकिन पोजीशन आपको हाथ और पैर की चेंज करनी है, हर बार सांस लेना है और छोड़ना है। चलिए, हर बार पैर पीछे लगना चाहिए, यहां ना पंजों के ऊपर करना है। हाँ, पंजों के ऊपर जितना कर रहे उतना पैर मुड़ना चाहिए पीछे, पूरी बटक्स पे हिट होना चाहिए, पूरी मूवमेंट है बॉडी की। सिर्फ एक मिनट, सिर्फ 60 सेकेंड्स, 1 किलोमीटर रोड रनिंग का फायदा। आपको बारिश के टाइम में बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर प्रॉपर की है तो जितना फायदा आपको 1 किलोमीटर बाहर जाके रनिंग करने में हो रहा है उतना ही आपको फायदा है, आपके हार्ट की फिटनेस अच्छे से बढ़ती है। चलिए अभी समाप्त करते हैं, ओम शांति। प्लीज बैठ जाइए अपनी जगह पर, आपका नेक्स्ट सेशन राजयोग का बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, शुरू होने जा रहे हैं। प्लीज आंखें बंद करके बैठ जाइए एक मिनट के लिए, हाथ सिर्फ, प्लीज प्लीज बैठ जाइए आराम से। बस आंखें बंद कर लीजिए एक मिनट के लिए, सिर्फ रिलैक्स कर लीजिए। प्लीज आंखें बंद, सिर्फ 30 सेकंड आंखें बंद, और महसूस करें कि जो भी आपने योगिक व्यायाम किया है उससे ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में इक्वली फैला है, मेरे सभी ऑर्गन्स पूरी तरह से फिट हैं, हम हेल्दी हैं। और थैंक्स करें परमपिता परमात्मा का, सुप्रीम सोल का। दोनों हाथों को हल्का सा रब करके आंखों को स्पर्श दें, छोड़ें। ओम शांति, थैंक यू। नेक्स्ट सेशन आपका शुरू होने, ओम शांति।